Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajata Girinibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय
बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय
बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय मृदाय नम ओम मृदाय नम ओम मृदाय नम ओम नमो मृदाय मृदाय नम ओम नमो मृदाय मृदाय नम ओम मृदाय नम ओम मृदाय नम ओम नमो मृदाय मृदाय नम ओम नमो मृदाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नमः शिवाय शिवाय नम ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद के अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में चतुर्थ मंत्र की व्याख्या चल रही है। अभ्यास करें। नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षस्
नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षस्
तडिद्गर्भरितवः समुद्राः
तडिद्गर्भरितवः समुद्राः
अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे
अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे
यतो जातानि भुवनानि विश्वा
यतो जातानि भुवनानि विश्वा
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्
बहुभिः प्रजाः सृजमानां स्वरूपः
बहुभिः प्रजाः सृजमानां स्वरूपः
अजो येको जुषमाणानुशेते
जो एको जुषमाणानुशेते
जहात्येनां मुक्तभोगामजोऽन्यः
जहात्येनां मुक्तभोगामजोऽन्यः
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिश्वस्वजाते
समानं वृक्षं परिश्वस्वजाते
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ती
तयोर्यन्यः पिप्पलं स्वादवत्त्वी
अनश्नन्यो अविचाकशीतिः
अनन्यश्रन्नयो अविचाकशीतिः
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो
अनीशया शोचति मुह्यमानः
अनीशया माया शोचति मूयमानः
जुष्टं यदा पश्यत्यनन्यमीशम्
जुष्टं यदा पश्यत्यन्नमिशन् मनः
अस्य महिमानमिति वीतशोकः
अस्य महिमानमिति वीतशोकः
ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्
ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्
यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः
यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः
यस्तं न वेद किं ऋचया करिष्यति
यस्तं न वेद किं ऋचया करिष्यति
य इत्तद्विदुस्त इमे समासते
य इत्तद्विदुस्त इमे समासते
उपनिषद का प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा एक है, लेकिन एक होता हुआ भी विश्व में ये दिखाई पड़ने वाले जो अनेकपना है, अधिदैव अध्यात्म और अधिभूत, ये जो त्रिपुटी दिखाई पड़ रहा है यह भी उसी परमात्मा का स्वरूप है। वेद और वेदांत की यह दृष्टि रही है कि सबसे पहले एक होना चाहिए, एक ही न हो तो अनेक होने की कोई संभावना ही नहीं है। और यदि एक है तो फिर अनेक भी हो सकते हैं। इस प्रकार की अवधारणाओं से शून्यवादियों का निषेध कर दिया गया है। शून्यवादी एक को भी स्वीकार नहीं करते। कुछ विचारक हैं भारतीय दर्शन के पक्ष में कि वह लोग शुरू में कोई पदार्थ मानते ही नहीं है, एक भी पदार्थ नहीं मानते, सत्ता नहीं मानते, अस्तित्व नहीं मानते, अचानक कोई वस्तु पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया बिना कारण का, बिना आधार का, ऐसे शून्यवादियों की मान्यता है। जबकि वेदांत की दृष्टि रही है कि कोई न कोई एक आधार होना चाहिए, आधार के बिना कोई वस्तु उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, भ्रांति के लिए भी अधिष्ठान होना चाहिए। निराधिष्ठान भ्रांति नहीं हो सकती है, कोई आधार ही नहीं है तो भी तो भ्रांति नहीं हो सकती है। भ्रांति के लिए एक आधार होना चाहिए, एक आधार में अनेक भ्रांति हो सकती है, लेकिन भ्रांति का आधार ही नहीं है तो फिर भ्रांति भी संभव नहीं है। आप लोगों ने कई बार वेदांत की प्रक्रिया सुनी है, वेदांत सुना है, एक रस्सी में अनेक बातों की, अनेक भावों की भ्रांति हो सकती है, उसी एक रस्सी में सर्प की प्रतीति हो सकती है, सर्प दिख सकता है देखने वालों को, उसी एक रस्सी में जलधारा दिख सकता है, जलधारा की भ्रांति हो सकती है, उसी एक रस्सी में डंडे की भ्रांति हो सकती है, उसी एक रस्सी में लकड़ी की डंडे की भ्रांति हो सकती है, उसी में भू छिद्रों की भ्रांति हो सकती है। एक है तो अनेक की भ्रांति हो सकती है, एक ही नहीं है तो भ्रांति भी कहां होगी। निराधार शून्य में भ्रांति नहीं हो सकती है, इसलिए वैदिक सनातन धर्म और वेदांत का ये सिद्धांत रहा है कि कम से कम भ्रांति के लिए एक पदार्थ, एक वस्तु, एक आधार, एक अधिष्ठान होना चाहिए। उसी को आधार मानकर ये उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में कहा गया एको देव सर्वभूतेषु गुणः, या एको बहुधा जो एक था शक्ति योगात बहुधा, भ्रांति के एक से एक रस्सी अनेक वस्तु हो सकता है, तो भ्रांति के ही योग से माया के ही योग से एक ही ब्रह्म अनेक रूप हो सकता है। तब उसी प्रसंग में श्रुति को स्वयं ही अनेक रूप में वह क्या क्या हुआ इस बात को वर्णन करते हुए कहा कि वह सबसे पहले अधिदेव हुआ। वैदिक सनातन धर्म में जितने भी अधिदैवों की अवधारणा हुई है वो सब उसी एक से अधिदैव अनेक अधिदैव उत्पन्न हुए, यानी प्रकट हुए, यानी प्रतीत हुए, और उसी एक अधिष्ठान से अनेक अध्यात्म प्रकट हुए। प्रकट हुए माने प्रतीत हुए, ये बात आपको स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। अधिदैव प्रकट हुए, प्रकट हुए का मतलब प्रतीत हुए, क्योंकि वेदांत दर्शन की यह दृष्टि रही है यथार्थ सत्य वस्तु एक है, उसके अलावा सब केवल भ्रांति से प्रतीत मात्र हैं, ये सत्य नहीं है। आप अपने आप को प्रेमपुरी आश्रम में बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य मानते हैं कि इसको भ्रांति मानते हैं? आप सत्य मान लो कि कोई भ्रांत पुरुष किसी वस्तु को देखकर उसको सत्य मान लेवे तो इससे क्या वो सत्य हो जाएगा? आपके सत्य मानने से क्या आप सत्य हो जाएंगे? कोई भ्रांत पुरुष भ्रांति के चलते वह किसी पदार्थ को सत्य मान लेगा तो क्या वो सत्य हो जाएगा? किसी भ्रांत पुरुष को भ्रांति के चलते रस्सी की जगह पर वो सर्प है बिल्कुल सत्य है कह देगा तो क्या सत्य हो जाएगा वो सर्प? कोई भ्रांत पुरुष मरुभूमि को देखकर यहां बिल्कुल जल सत्य है कह देगा तो उसके कहने से क्या जल सत्य हो जाएगा? तो इसी तरह आप पहले तो यह निर्णय कर लो कि आप भ्रांत हैं कि अभ्रांत हैं। आपका जो निश्चय है वो यथार्थ है कि अयथार्थ है, यह निश्चय आप खुद करोगे कि कोई और करेगा? आपका निश्चय बिल्कुल यथार्थ है कि अयथार्थ है, इसका निर्णय आप खुद करोगे कि कोई और करेगा? पगला व्यक्ति मैं पगला हूं कि सही बुद्धि वाला हूं, यह निर्णय खुद पगला व्यक्ति करेगा कि कोई और करेगा? है? कोई और करेगा। तब फिर आप भ्रांत हैं कि भ्रांत नहीं है, सत्य हैं, यथार्थ हैं, सही हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो न आत्मानंद करेगा न आप करोगे, यह निर्णय करेगा उपनिषद, क्योंकि उपनिषद जो कहेंगे वो सही होगा और आप और हम जो कहेंगे वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद भ्रांत हैं। तो भ्रांत होने के कारण भ्रांति के अंतर्गत हम जो कहेंगे, जब तक वो भ्रांति रहेगी तब तक हम जो कुछ भी कहेंगे वो सही नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? यथार्थ है। पागल जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वो जो कहेगा वो सही नहीं होगा भाई, उसकी पगलाहट से वो निकलना पड़ेगा तब वो जो कहेगा वो सही होगा। तब तो जब आपका जन्म ही नहीं हुआ है तो आप यहां आकर रहोगे कैसे, बैठोगे कैसे? तब फिर आपका ये कहना है कि हम प्रेमपुरी आश्रम में बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है, ये सही सिद्ध नहीं होगा। क्या आप स्वप्न देखते हो और स्वप्न में किसी जगह पर जाते हो, कोई कार्यक्रम करते हो, कोई फंक्शन करते हो, कोई क्रियाकलाप आदि करते हो, तो क्या वो सही निकलता है आपके एक्सपीरियंस से? लेकिन सब कुछ होता है कि नहीं? मुझे लगता है कि कई बार प्रेमपुरी आश्रम में आकर सत्संग आप रात को भी सुनते हो, केवल दिन में नहीं सुनते हो, रात में भी सुनते हो, स्वप्न में आकर सुन लेते हो, स्वप्न देखते हो कि हम प्रेमपुरी आश्रम में बैठे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। ये स्वप्न आपको हो सकता है कि नहीं? आपको नहीं हुई है ऐसा स्वप्न? हमको तो कई बार हुआ है। हम बैठे नेपाल और स्वप्न देख रहे हैं प्रेमपुरी आश्रम में प्रवचन कर रहे हैं। तो अभी इस समय प्रेमपुरी आश्रम में प्रवचन कर रहे हैं तो ये सही है? मैं कैसे कहूं? हो सकता है वो भी सही हो। और जिस समय हम स्वप्न देखकर प्रेमपुरी आश्रम में आकर प्रवचन कर रहे थे स्वप्न में, उस दिन आप ना आए हुए हों इसलिए आप नहीं मिले हों हम, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि प्रेमपुरी आश्रम में ना आया हुआ ऐसा कोई दिन ही नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कई बार आपकी गैर हाजिरी हुई है, कई बार हमारी गैर हाजिरी हुई है। अब हो सकता है कि आपके गैर हाजिरी में हम सपने में आकर यहां प्रवचन किया हो और आपको श्रवण करने को न मिला हो। ये सब क्योंकि वेदांत की एक ही दृष्टि है। इस दृष्टि पर आप दृढ़ नहीं रहेंगे तब तक वेदांत आपको समझ में नहीं आएगी। सद वस्तु यथार्थ वस्तु एक है, उसके अलावा सब के सब बहुधा शक्ति योगात, उस माया के योग से ये सब अनेक हैं। तो ये बात ठीक है। एक भ्रांत पुरुष के लिए दूसरे भ्रांत पुरुष का निर्णय ठीक हो सकता है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? एक भ्रांत पुरुष को दूसरे भ्रांत पुरुष का निर्णय ठीक हो सकता है, लेकिन एक यथार्थ दृष्टि वाला पुरुष को दूसरे भ्रांत पुरुष का निर्णय क्या वो ठीक हो सकता है? यथार्थ निर्णय वाला पुरुष यथार्थ व्यक्ति को किसी अन्य भ्रांत पुरुष का जो निर्णय है वो ठीक तो नहीं हो सकता है। भ्रांत तो भ्रांत ही है, हमारी खुद की भ्रांति नहीं गई है अभी तक, तो हम यथार्थ कैसे हो सकते हैं जिस अनुभव को हम यह कह रहे हैं? इसलिए उपाधि ही यथार्थ नहीं है तो इस उपाधि के चलते यहां हम जो कुछ भी करते हैं वो सब यथार्थ में नहीं होगा। ये वेदांत का रहस्य है। तब ये श्रुति ने कहा कि हे परमात्मा, तुम यथार्थ में तो एक हो परंतु शक्ति योग के चलते आप अनेक हुए हो। जितने भी अधिदेव हैं वे सब तुम्हारा ही स्वरूप है। केवल अधिदेव तुम्हारा स्वरूप नहीं, अध्यात्म जितने भी हैं वह भी तुम्हारे स्वरूप हैं। उसी बात को कल के इस मंत्र के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा था। तम स्त्री तम पुमानसी तम कुमार उतवा कुमारी। संसार में जितनी भी स्त्री लिंग के द्वारा जो वाच्य हैं वे सब तुम्हारा ही स्वरूप है, क्योंकि तुम स्त्री भी नहीं हो पुरुष भी नहीं हो, परंतु तुम अधिष्ठान में शक्ति योग से स्त्रीत्व की कल्पना हुई है और उस कल्पित स्त्रीत्व के द्वारा सारा व्यवहार चल रहा है। इसलिए जो व्यवहार चल रहा है ये व्यवहार परमार्थ में नहीं है। मंडूक के कारिका में और विवेक चूड़ामणि आदि में गौड़पादाचार्य जी और शंकराचार्य जी कहते हैं, यदि सत्यम भवेद विश्व सुसुप्तौ उपलब्धेत। यदि ये सारा का सारा जगत व्यावहारिक जगत सत्य होता तो सुसुप्ति में भी इसकी उपलब्धि होती। सुसुप्ति में इसकी उपलब्धि नहीं होती, इसी से ये सिद्ध हुआ कि यह सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा रहता है। जागृत में रहे स्वप्न सुसुप्ति में न रहे वो सत्य हो ही नहीं सकता है। एक काल में रहे दूसरे काल में न रहे उसको तुम सत्य नहीं कह सकते। एक देश में रहे और दूसरे देश में न रहे उसको सत्य नहीं कह सकते। एक वस्तु में प्रतीत होवे और दूसरे वस्तु में प्रतीत न होवे उसको सत्य नहीं कह सकते। वेदांत की दृष्टि यह रही है कि सत्य होने के लिए उसको हर काल में उसकी प्रतीति होनी चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए। सत्य होने के लिए उसको हर देश में उसकी प्रतीति होना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए। सत्य होने के लिए हर वस्तु में उसकी प्रतीति होनी चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए, तब जाकर उस वस्तु का हम सत्य कह सकते हैं। एक वस्तु में प्रतीत होवे दूसरे वस्तु में प्रतीत न होवे उसको हम सत्य नहीं कह सकते। अस्तित्व क्योंकि सर्वव्यापक होने के कारण हर वस्तु में उसका प्रतीति, उसकी प्रतीति होती है, होना चाहिए, तभी हम उसको सत्य मान सकते हैं। आप ये बता सकते हो पदार्थ और पदार्थ का अस्तित्व। जैसे हम व्यवहार में एक शब्द प्रयोग किया करते हैं, जो वस्तु हमको अनुभव में आ रहा है हर वस्तु के साथ है शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं। संसार में जो भी प्रतीत हो रहा है, जो भी वस्तु अनुभव में आ रहा है, उन सारे अनुभव में आए हुए पदार्थ के साथ हम एक अनुभव करते हैं, वो अनुभव है का अनुभव हम सर्वत्र करते हैं और प्रयोग भी करते हैं। उदाहरण के रूप में हम ये कहते हैं कि माला है, उदाहरण के रूप में हम ये कहते हैं कि पेपर वेट है, उदाहरण के रूप में ये कहते हैं कि ये पुस्तक है। अब आप देख लो कि ये है पना हर वस्तु में है कि विद्यमान है कि नहीं। आप दुनिया में कोई ऐसा वस्तु आप सिद्ध कर सकते हैं जिस वस्तु में है की अनुवृत्ति न हो, और जिस वस्तु में है की अनुवृत्ति नहीं होगी तो उस वस्तु का आप क्या कहोगे? नहीं है। और आश्चर्य की बात है, जिस वस्तु में है की अनुवृत्ति नहीं होगी उस वस्तु को भी सिद्ध करने के लिए है की आवश्यकता पड़ती है। ये वैज्ञानिक वेदांत का एक विशेष रहस्य है। कुर्सी है, कुर्सी के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए भी कुर्सी के साथ है को जोड़ना पड़ेगा, कुर्सी का अभाव सिद्ध करने के लिए भी है को जोड़ना पड़ेगा। है को जोड़े बिना भाव और अभाव तुम सिद्ध कर ही नहीं सकते। है को जोड़े बिना, है को लिए बिना भाव और अभाव तुम दोनों को सिद्ध कर ही नहीं सकते। आपके पिताजी हैं तो उनके साथ भी पिता के साथ प्लस है को जोड़ना ही पड़ेगा, और आपके पिताजी का अभाव सिद्ध करना होगा तो भी आपको पिता के साथ है को जोड़ना ही पड़ेगा। पिता नहीं है तो क्या हुआ? तो पिता का भाव और अभाव दोनों किसके साथ जुड़ा हुआ है? है के साथ। है ऐसी वस्तु है कि दुनिया में सर्वत्र है और हर पदार्थ में है, हर काल में है, हर देश में है और हर वस्तु के साथ वो जुड़ा हुआ है। इसलिए है माने क्या? जिसको संस्कृत में हम लोग अस्ति बोलते हैं उसी को हिंदी भाषा में है कहेंगे। तो अस्ति माने सत्ता, होना पना। एक सत्ता को माना गया है और उसी सत्ता के आधार में वस्तु के भाव और अभाव को सिद्ध करते रहे हैं। यही व्यवहार है कि नहीं? बोलो। है का तुम अभाव सिद्ध कर ही नहीं सकते, दुनिया में कहीं भी है का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते। वस्तु के अभाव सिद्ध कर सकते हो लेकिन है का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते हो। वस्तु के भाव और अभाव सिद्ध हो सकते हैं लेकिन है का भाव अभाव सिद्ध ही हो, वो तो हमेशा भाव रूप है। इसलिए है ये अनुवृत्त है, सर्वत्र अनुवृत्त है, है का सर्वत्र अनुभव, माला के साथ भी है विद्यमान है, पेपर वेट के साथ भी है विद्यमान है, पुस्तक के साथ भी है विद्यमान है, इसका मतलब है का व्यावृत्त हो ही नहीं सकता। सर्वत्र अनुवृत्त है, जो अनुवृत्त तत्व है वो एक है एक है, पदार्थ अनेक है, है आपको समझ में आ गया वेदांत, पदार्थ वस्तु अनेक हैं, नाम रूप अनेक हैं, लेकिन है एक है। तम स्त्री तम पुमानसी, तो स्त्रीत्व तो भी उसी एक सत्ता में कल्पना की गई है, उस कल्पित स्त्रीत्व के द्वारा तुम्हारा सारा व्यवहारिक सत्ता चल रहा है। इसी तरह उसी एक सत्ता में अस्तित्व में पुरुष की कल्पना की गई है और उस कल्पित पुरुष के द्वारा तुम्हारे सारा का सारा व्यावहारिक जगत व्यावहारिक सत्ता चल रहा है। तुम कुमार उतवा कुमारी, उसी एक अस्तित्व में